30 अप्रैल सोमवार। दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। काबुल और कंधार में चरमपंथी हमले, कम से कम 40 लोगों की मौत।
دشمن توانست گفته میشه که در بین هنمی مطبوعات ما کمره جای بجای کردن و خود انتحار کردن.
جمو کشمیر میں منتری منڈل میں فیر بدل۔
میں ایشور کی شپت لیتا ہوں کہ جو وشی راج کے منتری کے روپ میں۔
راج کے گورنر این این بھورا نے جمو میں آج بی جے پی کے 6 اور پی ڈی پی کے 2 نئے منتریوں کو شپت گرہن کروائی۔
اوڈیسا میں بلاتکار کی شکار 6 سال کی بچی نے دم توڑا۔
इतने दिनों में केवल एक ही बार वो खांसी थी और अपना हाथ पैर हिलाया था।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। अफगानिस्तान में आज अलग अलग बम धमाकों में 11 बच्चों समेत कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई। राजधानी काबुल में हुए 2 बम धमाकों में कम से कम 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें 9 पत्रकार शामिल हैं। धमाकों में 50 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पहला धमाका मोटरसाइकिल पर सवार आत्मघाती हमलावर ने किया, दूसरा धमाका थोड़ी देर बाद हुआ। ये धमाका पहले धमाके की खबर जुटाने आए पत्रकारों के पीछे हुआ। पुलिस का कहना है कि हमलावर कैमरामैन के तौर पर वहाँ मौजूद था। इस्लामिक स्टेट ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। वहीं कंधार में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से लदी वैन के जरिए नेटो के काफिले को निशाना बनाया। इस हमले में 11 स्कूली छात्रों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने साजिद जावेद को देश का नया गृह मंत्री नियुक्त किया है। वो अंबर रट की जगह ले रहे हैं। अंबर ने कल इस्तीफा दे दिया था। जावेद के पिता पाकिस्तान में बस ड्राइवर थे। उनका परिवार 1960 के दशक में ब्रिटेन आया था। वो साल 2010 से सांसद हैं और 3 अलग अलग विभागों का जिम्मा संभाल चुके हैं। आर्मीनिया में हफ्ते से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद विपक्ष के नेता निकोल पाशिनयान को प्रधानमंत्री नामित किया गया है। मंगलवार को होने वाले चुनाव में उन्हें सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के वोटों की ज़रूरत होगी। रिपब्लिकन पार्टी का संसद में बहुमत है। पाशिनयान के विरोधी धड़े के सांसद एडमन मारुक्यान ने घटनाक्रम के तेजी से बदलने पर हैरानी जाहिर की। उन्होंने कहा,
It's really unbelievable. We worked together. We were in one coalition till now.
वास्तव में ये विश्वास से परे बात है। हमने एक साथ काम किया, अब तक हम एक गठबंधन में हैं। विपक्षी गठबंधन का हम हिस्सा हैं। ये हम सभी के लिए हैरान करने वाला मामला है। जब उन्होंने प्रचार शुरू किया तो ये यकीन करने वाली बात नहीं थी कि एक महीने के बाद ऐसा नतीजा मिलेगा जो अब सामने आया है। ये थे सांसद एडमन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई ने अमेरिका पर मध्य पूर्व में संकट पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया है। वो अमरीका के नए विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। पोम्पियो ने कहा था कि वो क्षेत्र में ईरान की अस्थिर करने वाली हरकतों को लेकर चिंतित हैं। आयतुल्ला खामनेई ने कहा कि अमेरिका सऊदी अरब को ईरान से लड़ाने की कोशिश कर रहा है। उनकी कोशिश मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने की है। रोहिंग्या संकट की जांच कर रहे संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी म्यांमार का दौरा कर रहे हैं। वो म्यांमार के नेता आंग सान सूची से मुलाकात करेंगे। अधिकारी ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि देश छोड़कर गए रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी हो सके। बीते साल अगस्त से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मुसलमान सीमा पार करके बांग्लादेश जा चुके हैं। शरणार्थियों ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को अपनी दिक्कतों की जानकारी दी। एक शरणार्थी अब्दुल हलीम ने बताया, कल हमने अपनी तकलीफों की जानकारी संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को बताई। उन्होंने हमारी दिक्कतों को सुना, वो दुखी थे और उन्होंने हमारे साथ अपना समर्थन जाहिर किया। हमें जानकारी हुई है कि वो आज बर्मा जा रहे हैं और वो सरकार के साथ बात करेंगे और हमारी वापसी का रास्ता तैयार करेंगे। ये थे एक रोहिंग्या शरणार्थी के शब्द। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर संदीप सोनी के साथ। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और फेसबुक के जरिए भी सुन सकते हैं दिन भर का सीधा प्रसारण। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के नजदीक दो बम हमलों में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं। मृतकों में 9 पत्रकार भी शामिल हैं। इन हमलों में लगभग 50 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पहला हमला आत्मघाती हमलावर ने किया जो मोटरसाइकिल पर सवार था। काबुल के पुलिस प्रमुख मोहम्मद दाऊद अमीन का कहना है कि दूसरा धमाका तब हुआ जब वहां पर मीडिया कर्मी पत्रकार बंधु मौजूद थे, पहले धमाके की खबर देने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे। काबुल के पुलिस प्रमुख मोहम्मद दाऊद अमीन कह रहे थे कि हमलावर कैमरामैन बनकर आया था।
दुश्मन तवानिस्त गुफ्ता मेशा के दरबाने हिनेमी मतबूत मो कैमरा जय बजाय कर दाना।
हमलावर कैमरामैन बनकर आया था, उसने पत्रकारों के बीच जाकर खुद को धमाके से उड़ा दिया। इस धमाके की वजह से वहां मौजूद पत्रकार और आसपास अन्य कई लोग भी मारे गए या घायल हो गए। ये थे काबुल के पुलिस प्रमुख मोहम्मद दाऊद अमीन के शब्द। संवाददाताओं का कहना है कि पत्रकारों पर यह हमला पूरी तरह से अप्रत्याशित था।
This incident today is just another story of Afghanistan's...
बीबीसी संवाददाता वहीद मसूद कह रहे थे कि यह हमला अफगानिस्तान के हालिया इतिहास की एक और कहानी है। अफगानिस्तान लगभग 4 दशक से युद्ध और संघर्ष झेल रहा है। यहाँ हर दिन यही होता है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं। काबुल में इस धमाके के बाद कंधार में भी एक आत्मघाती हमला हुआ जिसमें कम से कम 11 बच्चे मारे गए। इस तरह अफगानिस्तान में आज 11 बच्चों, 9 पत्रकारों समेत कम से कम 40 लोग मारे गए हैं और मृतकों की संख्या बढ़ने की अभी भी आशंका है। दिन भर में अब रुख कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का, जहां आज पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में।
राज्य के गवर्नर एनएन वोहरा ने जम्मू में आज बीजेपी के 6 और पीडीपी के 2 नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण करवाई। पीडीपी और बीजेपी की साझी सरकार के मंत्रिमंडल में पिछले 4 वर्षों के दौरान ये पहला बड़ा फेरबदल है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सरकार के प्रवक्ता और मंत्री नईम अख्तर ने बताया कि मंत्रिमंडल में परिवर्तन का कठुआ की घटना के साथ कोई संबंध नहीं है।
ये जो तजुर्बा अभी तक है उसके आधार पे, उसकी रोशनी में एक नया फैसला हो गया दोनों पार्टियों ने किया है। तो जाहिर है इसका मकसद यही है कि नए ख्याल लेके नए लोग आ जाएं, नया फोकस आ जाए।
इनका कहना था कि बीजेपी और पीडीपी साझी नीति के अंतर्गत कश्मीर में बातचीत के लिए वातावरण बेहतर करेंगे।
इस खाली गवर्नेंस के लिए अलायंस नहीं है, खाली पावर के लिए नहीं है, ये अलायंस है विद ब्रॉडर इनिशिएटिव, विद ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स, कि हम लोगों के दिलों को मिलाएं, जम्मू और कश्मीर के लोगों को मिलाएं, कश्मीर और बाकी मुल्क के लोगों के दिलों को मिलाएं।
नईम अख्तर के अलावा बीजेपी के कश्मीर इंचार्ज राम माधव और मोदी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी मंत्रिमंडल में परिवर्तन को सामान्य प्रक्रिया जतलाया और कहा कि इसे कठुआ के संदर्भ में न देखा जाए। नए उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने शपथ के बाद तो यहां तक कह दिया कि सरकार बच्ची को न्याय देने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन इस घटना को उछाला जा रहा है।
एक छोटी सी बात है, रसाना इस प्रकार की घटना दोबारा कभी ना हो, इस प्रकार हमें विचार करना है, उस बच्ची को न्याय मिले। ऐसे बहुत से चैलेंजेस सरकार के सामने रहते हैं, मुझे लगता है कि रसाना केस को उसको हम इतना वो भाव देने में लगता है।
विरोधी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कठुआ मामले पर बीजेपी और महबूबा मुफ्ती को कंफ्यूज बताया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि एक तरफ दो मंत्रियों को दोषियों के पक्ष में हुई रैली में जाने पर हटाया गया और दूसरी तरफ कठुआ के एमएलए को मंत्री बनाया गया, हालांकि वो भी रैली में मौजूद था। याद रहे आज बीजेपी के 6 और पीडीपी के 2 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जबकि बीजेपी के 4 और पीडीपी के 1 मंत्री से त्याग पत्र लिए गए। कठुआ रेप और हत्या मामले पर देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बाद बीजेपी के 2 ऐसे मंत्रियों को पहले ही मंत्रिमंडल से हटाया गया है जिन्होंने गिरफ्तार गए दोषियों के पक्ष में हुई रैली में भाग लिया था। कठुआ केस इस समय सुप्रीम कोर्ट और स्थानीय न्यायालय में है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 3 मई तक टाल दिया है। रियाज मसरूर, बीबीसी, श्रीनगर।
तो जैसा कि आपने सुना, जम्मू कश्मीर की पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल में इस फेरबदल के पीछे कुछ जाहिर तौर पर वजह होनी चाहिए। वो वजह क्या है समझने के लिए मैंने जम्मू में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार तरुण उपाध्याय से अब से कुछ देर पहले बात की।
आज का जो मंत्री परिषद का जो फेरबदल हुआ है, इसका परिप्रेक्ष्य ये है कि बीजेपी के दो मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिए थे, और त्याग पत्र का परिप्रेक्ष्य है कि उन्होंने कठुआ इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक छोटी सी लड़की का कत्ल और रेप हुआ था, खबरें आई थी कि उन्होंने जो रेपिस्ट के सपोर्ट में जो रैली थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पीडीपी में ये है कि पीडीपी के जो पूर्व वित्त मंत्री थे राज्य सरकार में हसीब द्राबू, उन्होंने एक बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए दिल्ली में कश्मीर के हवाले से एक उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की थी जिसको पार्टी में और कश्मीर में ऐसा समझा गया था इट्स ए वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल काइंड ऑफ थिंग। पीडीपी के उनका इस्तीफा दिया था, तो तीन मंत्रिपरिषद में जो स्थान थे वो खाली हो गए थे। उन स्थानों को पूरा करने के लिए भरने के लिए तो जो मंत्रिपरिषद था वो एक पेंडिंग चीज थी, आज पूरा किया गया है, भरा गया है।
तरुण उपाध्याय, ये तो वो सारी चीजें हैं जो दिखती हैं, सामने समझ में आती हैं, लेकिन किसी भी मंत्रिमंडल के फेरबदल के पीछे राजनीतिक पहलू भी होते हैं। इस मंत्रिमंडल फेरबदल में कौन से राजनीतिक पहलू आपको नजर आते हैं जिनका खास ख्याल रखा गया है?
देखिए, बीजेपी जो इस वक्त हुकूमत में पहली बार जम्मू कश्मीर राज्य में आई है 70 साल के इतिहास में, पार्टी में अंदर दो तीन बातें चल रही है। एक कहती है कि हम गवर्नेंस का एक्सपीरियंस दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में अभी तक ये एक एनजीओ के तौर पर देखा जाता था, यानी कि ये वो पार्टी है जो सरकार से बाहर ही हमेशा रहेगी, धरने प्रदर्शन करेगी, सरकार में कभी आई नहीं। पहली बार ये पार्टी सरकार में आई है तो उनको गवर्नेंस का एक्सपीरियंस देने के लिए भी पार्टी का एक विचार ये है। दूसरी बड़ी बात, पार्टी में और जम्मू में ऐसा माना जा रहा है पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, कठुआ जो एक कांड हुआ है जम्मू में और खासकर भाजपा के जो समर्थक है उनका ये मानना है उप मुख्यमंत्री जो जम्मू का एक चेहरा है, पार्टी के शीर्ष नेता है, वो हमारे लोगों की बात महबूबा मुफ्ती के सामने पुरजोर तरीके से नहीं रख पाए। उनका ये भी मानना है कि डॉक्टर निर्मल सिंह जो सीबीआई की इंक्वायरी पार्टी और जम्मू के लोग चाहते थे उस मांग को मनवाने में असफल रहे हैं। और तीसरी बात यह है क्योंकि जम्मू से बहुत बड़ी उम्मीदें थी बीजेपी को लेकर, वो उम्मीदें पूरी होती हुई नजर नहीं आती थी, और डॉक्टर निर्मल सिंह जो थे वो एक पार्टी का चेहरा थे राज्य में बीजेपी को लेकर। पार्टी का ये सोच रहा, ऐसा मानना रहा जो हमें जानकारी मिली है कि इनकी जगह एक नए चेहरे को लेके आइए।
जो नए चेहरे शामिल किए गए हैं उसमें राजीव जसरोटिया भी शामिल हैं जो कठुआ के विधायक हैं।
जी,
ये वही राजीव जसरोटिया हैं कठुआ के विधायक जो हिंदू एकता मंच की रैली में गए थे, जहां से जिस रैली में कठुआ बलात्कार कांड के अभियुक्तों का कथित तौर पर बचाव किया गया था, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना, इसे कैसे देखते हैं आप?
कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो हीरानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के नजदीक की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे ये कांड हुआ था, उसके साथ बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है सांबा डिस्ट्रिक्ट जो आता है कठुआ के नजदीक लगता है, वहाँ सांबा डिस्ट्रिक्ट से जो पहले जो विधायक थे वहाँ पे चंद्र प्रकाश गंगा, उनका त्याग पत्र दे दिया गया था। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी बेल्ट में पड़ती है, और जो देवेंद्र कुमार मलयाल है वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आते हैं, और जो राजीव कुमार जसरोटिया है वो कठुआ बेल्ट से आते हैं, तो पार्टी को इनको ये लेना एक तरह से पार्टी की मजबूरी भी थी।
जम्मू कश्मीर में मंत्रिमंडल में फेरबदल विश्लेषण कर रहे थे जम्मू से ही वरिष्ठ पत्रकार तरुण उपाध्याय।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
दिन भर में अगली खबर ओडिशा से, जहां बलात्कार की शिकार 6 साल की एक बच्ची ने 8 दिन तक मौत से जूझने के बाद आज दम तोड़ दिया। भुवनेश्वर से संदीप साहू की रिपोर्ट।
सालेपुर बलात्कार पीड़िता 6 साल की बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने शुक्रवार को ही उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। 21 अप्रैल को एससीबी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के बाद से ही पीड़िता को आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था। उसकी हालत बेहद नाजुक थी और उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। आखिरकार कल शाम लगभग 5:30 बजे बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची के मौत से बौखलाए हुए उसके पिता ने बिलखते हुए बलात्कारी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। इतने दिनों में केवल एक ही बार वो खांसी थी और अपना हाथ पैर हिलाया था, बस और कुछ नहीं।
उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था लेकिन आज किया, लेकिन फिर उसका हृदय ने काम करना बंद कर दिया। 21 अप्रैल की शाम को सालेपुर के निकट जगन्नाथपुर गांव के एक 28 वर्षीय विवाहित युवक ने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को स्थानीय स्कूल में ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसने बच्ची का गला घोंटकर उसकी हत्या करने की भी कोशिश की और उसे मृत समझकर उसे वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। बच्ची जब काफी देर तक घर नहीं लौटी तो उसके परेशान माता पिता और अन्य परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की और आखिरकार उसे स्कूल के बरामदे में बेहोश हालत में पाया गया। बच्ची को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी गंभीर हालत के मद्देनजर डॉक्टरों ने उसे SCB मेडिकल कॉलेज ले जाने की सलाह दी। उसी रात उसे SCB के ICU में भर्ती किया गया। घटना के अगले दिन यानी 22 अप्रैल की सुबह अभियुक्त मोहम्मद मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया गया था। कटक ग्रामीण के अतिरिक्त SP कृतिवास जेना ने बताया कि पीड़िता के मौत के बाद अब अभियुक्त के खिलाफ हत्या के लिए दफा 302 भी लगाया जाएगा। अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश किया जा चुका है। बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम केस का मुस्तैदी से फॉलोअप कर रहे हैं और अभियुक्त को सख्त सजा हो इस प्रयास में लगे हुए हैं। आज राज्य विधानसभा में इस घटना पर वक्तव्य रखते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बच्ची की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया और सदन को आश्वासन दिया कि अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने पीड़िता के परिवार के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि की भी घोषणा की। लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद इस मामले को लेकर राजनीति गर्मा रही है। आज पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साहू के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीड़िता के परिवार वालों से भेंट की। इधर राजधानी भुवनेश्वर में भाजपा ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को जमकर लताड़ा। इस घटना को लेकर उड़ीसा में काफी हंगामा हुआ, विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी। ये घटना हाल ही में हुई कठुआ, उन्नाव और सूरत बलात्कार कांड से किसी भी मायने में कम दर्दनाक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर इसे न मीडिया में वैसी तवज्जो दी गई, न इसे लेकर वैसा हंगामा देखने को मिला जैसा उन 3 मामलों में देखा गया था। इस बात को लेकर उड़ीसा के लोगों में काफी रोष है। संदीप साहू, BBC भुवनेश्वर।
बिहार के जहानाबाद जिले में एक लड़की से बलात्कार की कोशिश करने वाले कुछ लोगों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक इस घटना में और भी कई लोग शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
पुलिस के मुताबिक घटना शनिवार या रविवार सुबह की है। इस मामले में कुल 7 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। जहानाबाद जिले की पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में से एक नाबालिग है। घटना में सीधे शामिल 7 लोगों के अलावा 1-2 लोगों के नाम वीडियो बनाने में सामने आए हैं। पुलिस इनकी भी तलाश कर रही है। पटना के जोनल IG नैयर हसनैन खान ने BBC को फोन पर बताया,
इसमें अभी तक 4 लोग अरेस्ट हो गए हैं और हम लोग अभी पहचान भी बाकी लोगों की हो गई है, रेड हो रही है उनकी अरेस्टिंग के लिए भी, और विक्टिम की भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आए हैं, बट ये है कि जितने भी लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं दे हैव बीन असर्टेंड और 4 अरेस्ट अभी इमीडिएटली हो चुके हैं। बाकी की गिरफ्तारी के लिए भी हमारी रेड चल रही है, हमारी SIT उसमें लगी हुई है।
पुलिस ने बलात्कार की कोशिश पोक्सो और IT एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। इस मामले में पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है और यह जांच की जा रही है कि क्या इसका घटना से कोई संबंध है। विपक्ष ने इस घटना के बहाने सरकार पर तीखा हमला बोला है। सूबे के मुख्य विपक्षी दल राजद के प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र के मुताबिक बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।
जहानाबाद में कानून व्यवस्था सारा खराब हो गया है और इस बिहार में कोई राज नाम का चीज नहीं है। यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है और भगवान भरोसे यहाँ राज चल रही है, इसलिए जो भी घटना घटी है बिहार सरकार उसके लिए दोषी है। अगर शासन प्रशासन होता तो शायद इस तरह की घटना नहीं घटती। इसलिए नीतीश कुमार जी के शासन में जो शासन का इकबाल था वो सब खत्म हो गया, भगवान भरोसे ये सरकार चल रही है।
वहीं सत्तारूढ़ जदयू के प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार का कहना है कि यह घटना सामाजिक और मानसिक जकड़न का प्रकटीकरण है, साथ ही उन्होंने विपक्ष के आरोपों को भी खारिज किया है।
वीडियो के वायरल होने के बाद जहानाबाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया, मुकदमा दर्ज किया और 24 घंटे के अंदर उस कुकृत्य में जो लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हमने सुनिश्चित किया है। न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे और इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन विपक्ष इस सवाल को खड़ा कर रहा है, कानून व्यवस्था का सवाल, तो वैसे लोग जो जिनके दल के विधायक बलात्कार के आरोप में जेल के अंदर बंद है, उन्होंने उस विधायक को पार्टी से सस्पेंड नहीं किया, आज वैसे लोग सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि संवेदनशीलता बरतते हुए इस वीडियो को देखने दिखाने से बचें। मनीष दिल्ली, बीबीसी पटना।
इधर दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इन दिनों फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है एक फिल्म का प्रदर्शन जिसकी कहानी कथित तौर पर लव जिहाद जैसे विवादास्पद मामले पर आधारित है। नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
कैंपस में छात्र राजनीतिक गुटों का धैर्य कच्चे धागे से बंधा लग रहा है और जब तब हिंसा की शक्ल लेकर टूटता है। पिछले शुक्रवार जो हुआ वो एक नई मिसाल थी। जगह थी जेएनयू कैंपस के भीतर का साबरमती ढाबा। मौका था इन द नेम ऑफ लव नाम की फिल्म की स्क्रीनिंग का। मुद्दा बनने की वजह थी फिल्म की कहानी जो कथित तौर पर लव जिहाद जैसे विवादास्पद मामले पर आधारित है। फिल्म स्क्रीनिंग कराने वाले थे ग्लोबल इंडियन फाउंडेशन और विवेकानंद विचार मंच, जिनका पक्ष लिया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने। स्क्रीनिंग का विरोध करने पहुंचे छात्रों का ताल्लुक लेफ्ट पार्टियों से है, जिसमें आईसा, AISF और SFI। किसने किसको ज्यादा मारा, किसके कहां पर चोट आई, इसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। 3 FIR दर्ज हो चुके हैं। विश्वविद्यालय गेट पर पुलिस पेट्रोल वैन्स खड़ी हैं। पत्रकारों को भीतर जाने के लिए अपना पूरा इतिहास गेट पर गार्ड के पास लिखवाना पड़ता है। ज्यादातर छात्र या टीचर घटना पर बात करने से बच रहे हैं, हालांकि अफसोस सभी को भले ही बहुत हो। फिल्म स्क्रीनिंग करवाने और उसका विरोध करने वालों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी गंभीर हैं। जेएनयू ABVP के अध्यक्ष रह चुके आलोक सिंह कहते हैं,
जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं कम्युनिस्ट, जो अफजल गुरु की जो फांसी उसको मिला थी उसको मनाने की बात वो करते हैं, जब वो अफजल के अरमानों की बात करते हैं तब उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, लेकिन जब एक सिर्फ डॉक्यूमेंट्री मूवी चलती है तो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पता नहीं किस बिल में चली जाती है।
जिन छात्रों का रुझान भाजपा की छात्र विंग ABVP की तरफ है, उन्हें लगता है कि कैंपस में विपक्षी देश में पार्टी की सफलताओं से समझौता नहीं कर पा रहे हैं। उधर जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ के सभी चुने हुए प्रतिनिधि स्क्रीनिंग के खिलाफ रहे हैं। राम नाग JNUSU के पूर्व महासचिव रह चुके हैं और उन्हें लगता है कि JNU में जो बदलाव आया है वो वापस ठीक होना नामुमकिन सा है। राम नाग को सुनिए।
इरादा ये था कि किस तरीके से लव जिहाद का एक कॉन्सेप्ट ला करके कैंपस का जो माहौल है उसको फिर से भड़काया जाए, और ये एक सोची साजी कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि अभी 2019 का चुनाव होने वाला है और JNU को फिर से प्रोजेक्ट करने की साजिश चल रही है।
2016 के बाद से JNU में इस तरह के वाकये कई दफा हो चुके हैं। कथित तौर पर भारत विरोधी नारों के लगने से लेकर बायोटेक्नोलॉजी छात्र नजीब अहमद की रहस्यमय गुमशुदगी तक, सभी मामलों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां भी बटोरी हैं। जाहिर है जब कैंपस में इस तरह से हिंसा बढ़ेगी तो उसका असर छात्रों के साथ साथ टीचरों पर भी दिखेगा। JNU टीचर्स एसोसिएशन के सचिव सुधीर कुमार सुथार को भी बतौर अध्यापक बिगड़ते हालात पर मलाल है।
एक तरह का पीसफुल कैंपस जिसमें कि दो ऑपोजिट आइडियोलॉजिकल कैंप भी एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे और वो पीसफुल होता था, उसमें एक छोटे छोटे इशू को लेकर जैसे फिल्म स्क्रीनिंग हो या कुछ और तरह का प्रोटेस्ट हो उसमें मारपीट हो जाना, तो ये मुझे लगता है एक एकेडमिक एनवायरनमेंट ओवरऑल चेंज हो रहा है।
गौर करने वाली एक छोटी सी बात और भी है। एक जमाने में JNU के साबरमती हॉस्टल ढाबे को लवर्स पॉइंट भी कहा जाता था। आज उसी जगह पर लव जिहाद जैसे एक विवादास्पद मसले पर हिंसा भी हो चुकी है। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
और दिन भर में अब बारी है श्रोताओं की, आपकी चिट्ठियों की।
आपकी राय में मैं हूँ आपके साथ इंदु पांडे और आज मेरे साथ हैं,
नमस्कार, राजेश प्रियदर्शी की ओर से।
तो चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करते हैं राजेश जी।
जी बिल्कुल।
इस बार BBC इंडिया बोल में संदीप जी ने समय की मांग के अनुरूप विषय का चयन कर बाबाओं पर अंधविश्वास करने के मुख्य कारणों का बाखूबी जायजा लिया, जो बहुत अच्छा लगा। और ये है सादिक आजमी साहब, सऊदी अरब से इन्होंने हमें ये मेल भेजा है। और इसके अलावा बहुगुणा चाणक्य या नटवरलाल शीर्षक पर रेहान फजल द्वारा प्रस्तुत विवेचना काफी अच्छी लगी, ये गणेश हौजदार हैं जो हमारे काफी पुराने श्रोता हैं।
जी, और जाहिर है कि ये जो विषय था इंडिया बोल का, वो आसाराम बापू का जो मामला था उसका फैसला आने के तुरंत बाद हमें ये लगा कि ये अकेला मामला नहीं है और पूरे देश में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं इससे पहले गुरमीत राम रहीम और इसके पहले और कई बार। तो लोगों को शायद ये एक मौका था जब सोचना चाहिए कि विश्वास और भक्ति आस्था ये सब आपको शक्ति देते हैं, संबल देते हैं, लेकिन जब ये अंधविश्वास में बदल जाते हैं तो कैसे कैसे चंगुल में लोग फंस जाते हैं। ये उसकी कहानी थी। हमें लगा कि लोगों को हमेशा सजग और सतर्क रहना चाहिए।
बिल्कुल। और सतपाल सैनी है हिसार से, लिखते हैं कि आपके बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं वो 6 महीने या उससे पुराने भी चलते रहते हैं, उनको चेंज करना चाहिए।
किस कार्यक्रम के बारे में? वेब
पेज पे कुछ स्टोरीज होती हैं जो कई दिनों से चली आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं, बताते हैं इनका कहना है।
अगर इन्होंने कुछ उदाहरण दिए होते तो हमें समझने में आसानी होती। कई बार होता है कि जो पुरानी सामग्री है किसी वजह से दोबारा जब वो प्रासंगिक हो जाती है तो हम उसको जगह देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो पुरानी होने के बावजूद उसकी रेलेवेंस, उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है।
और ये हमारे पास मेल आया है कमलेश यादव बलिया उत्तर प्रदेश से, और साथ में हैं जयलेंद्र यादव गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, लिखते हैं कि आप लोग परीक्षा से संबंधित कार्यक्रम भी शुरू करें तो अच्छा होगा।
जी, ये सुझाव आपका अच्छा है। एक हमारा कार्यक्रम था, अगर आपको याद हो, उसका नाम था करियर क्या करूं, और जिस कार्यक्रम में हमने युवाओं को और छात्रों को ध्यान में रखते हुए ऐसी सामग्री तैयार की थी ताकि उनकी परीक्षा में मदद हो सके, खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो नौकरी के लिए लोग देते हैं। सुझाव आपका अच्छा है और जल्दी ही हमें अगर मौका मिला तो हम इस पर कुछ करने की कोशिश करेंगे।
और ये है फिरोज खान वैशाली सेक्टर 3 गाजियाबाद से, कहते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से नमस्कार भारत मोहम्मद शाहिद पेश कर रहे थे और सर्वप्रिया सांगवान ने भी पेश किया, दोनों की प्रस्तुति अच्छी थी, लेकिन सर्वप्रिया यदि कुछ शब्दों के उच्चारण पर थोड़ा सा काम कर लें तो उनकी प्रस्तुति में निखार आ जाएगा।
जी बिल्कुल, अगर इन्होंने बताया होता तो कि वो शब्द कौन से हैं तो आसानी होती, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं और हम खुद भी करते हैं कि हमारे जो कार्यक्रम है जिनका प्रसारण हमने किया है हम उसको गौर से सुनते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमसे कहीं गलती हुई है तो कहाँ हुई है और उसको हम कैसे ठीक करें।
और आकाश राज पटना बिहार से पूछते हैं कि किसी महिला न्यूज रीडर से प्रसारित करने के लिए बधाई, सर्वप्रिया सांगवान ने जो बीबीसी हिंदी की वो प्रस्तुति की है तो ये कहते हैं कि वो पहली महिला न्यूज रीडर बन गई है, पर मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, सर्वप्रिया सांगवान हमारी पहली महिला न्यूज रीडर नहीं है। बीबीसी का बहुत पुराना इतिहास है महिला प्रसारकों का और बहुत सारी महिला सहकर्मी हमारी रही हैं लंबे समय से। सुशीला सिंह दिल्ली से कार्यक्रम प्रसारित करती रहीं, रूपा झा हमारी प्रेजेंटर्स में से रही हैं, इससे पहले अचला शर्मा थी, बहुत सारे नाम मैं आपको याद दिला सकता हूँ और बहुत सारी महिलाएं प्रसारण करती रही हैं, तो सर्वप्रिया पहली महिला प्रसारक तो कतई नहीं है।
तो अब बारी है पता बताने की।
जी बिल्कुल, चलते चलते हम अपना पता बता दें। अगर आप हमें डाक से पत्र भेजना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
चिट्ठियों के बाद बारी है खेल समाचारों की। राखी शर्मा स्टूडियो में आ चुकी हैं।
जी, आईपीएल की खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। नए कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली बार ही खेलते हुए दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपने पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को मात दी थी। उसी जीत से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली की टीम अब से कुछ ही देर बाद चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उतरने वाली है और ताज़ा अपडेट यह है कि दिल्ली की टीम ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। वहीं पिछले मैच में मुंबई इंडियंस से हारने वाली सुपर किंग्स की कोशिश वापस जीत की पटरी पर लौटने की होगी। हालांकि घरेलू मैच से ट्रैक पर लौटी दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए चेन्नई की चुनौती उतनी भी आसान नहीं रहने वाली है। अंबाती रायडू चेन्नई की बैटिंग लाइनअप के मजबूत स्तंभ साबित हुए हैं। मुंबई के खिलाफ 46 रन की पारी के दौरान वो पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने इस साल के आईपीएल में 300 रन के आंकड़े को पार किया। वहीं मौजूदा आईपीएल की सबसे तेज सेंचुरी बनाने वाले शेन वॉटसन फिलहाल लय से भटके हुए नजर आ रहे हैं। रॉयल्स के खिलाफ 106 रन की पारी के बाद अगले 3 मैचों में उनके बल्ले से 9, 7 और 12 रन ही निकले हैं। शेन इन 3 मैचों में कोई विकेट भी नहीं ले पाए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दोनों टीमें एक अच्छे मुकाबले के लिए उतरेंगी।
राखी शर्मा से खेल समाचारों के बाद चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं वात्सल्य राय से।
बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान में आज अलग अलग बम धमाकों में 11 बच्चों समेत कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने साजिद जावेद को देश का नया गृह मंत्री नियुक्त किया है। आर्मेनिया में हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद विपक्ष के नेता निकोल पाशियान को प्रधानमंत्री नामित किया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया ब्रजेश मिश्र ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।